ओम शांति, ओम शांति। आज के मुरली कौन सुनाएगा? राजू बताओ, आज बाबा ने जो मुरली सुनाई सवेरे, सुनी ना कि नहीं सुनी? तो मुरली के एक अच्छे से महावाक्य बताओ। ज्ञान इसलिए सुनाया जा सुनना जाता है कि रखने के लिए नहीं, उसका चिंतन करो और दान करो। तो कौन बताएगा? पवित्र पतित पावन ब्राह्मण पतित पावन है, पतित पावन ब्राह्मण है बाबा ने आज कहा। और नष्ट मोहा बनना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, वारिस बनना है। वारिस बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? किसके ऊपर? हाँ, बाप पर वारिस बनना चाहिए। और हाँ, सत्युग को क्या कहते हैं? पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग कहते हैं उसको। तो पाप आत्मा कहाँ रहते हैं? हाँ, पुण्य आत्मा स्वर्ग में रहते हैं, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। और पाप आत्मा दो हो गए ना, तो पाप आत्मा कहाँ रहते हैं? संगम पर, कलयुग में संगम पर कौन रहते हैं? ब्राह्मण आदि। न पाप है न पुण्य, बीच के ऐसा, न पाप भी नहीं न पुण्य के नहीं है। तो पाप से पाव निकला और पुण्य तरक पहुंचा नहीं, अभी बीच में है, रास्ते पर है ना, यात्रा पर, इसलिए कहते हैं पूरा पहुंच जाएंगे। ये पाव एक निकला, एक पाव वहां एक पाव यहां है, तो अभी जा रहे हो, पूरा दोनों पाव उस तरफ होंगे तब कहेंगे देवता बने। ब्राह्मण बीच का है, ब्रिज पर है, ना कलयुग में है ना सत्युग में है, पक्का। इसलिए बाबा ने आज कहा कि कैसे कहें, अगर ऐसे है तो बाबा ने कहा बच्चे किससे डरो, किससे बचो? पापों से बचो। और क्या करो? औरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पापों से बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो पाप कैसे होता है? बाबा ने कहा ना, पापों से बचो, है ना। और क्या करना चाहिए? और सबसे सबके आशीर्वाद देना चाहिए। तो पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, दुआएं लेना चाहिए। पापों से बचना है, पहले पाप। पाप कहाँ होता है? अब ये कहता है कलयुग में जो रहते हैं तो पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा सत्युग में रहते हैं। तो अभी आप कलयुग में नहीं हो, संगम पर हो, तो पाप अगर करते हो अभी भी तो कलयुग में होंगे ना। तो कलयुग में नहीं है तो किसका ध्यान देना चाहिए कि मेरे से कोई पाप नहीं होना चाहिए? पाप कैसे होता है? तो बाबा ने कहा तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, वाणी से, बोल से, कर्मों से, ये सब पाप की लिस्ट है। तो पाप आत्मा तन से भी होता है, मन से भी होता है, धन से भी होता है। तो बाबा ने एक उदाहरण दिया कि धन कहाँ लगाना चाहिए, है ना। तो उदाहरण दिया बॉम्बे में बाबा ने एक ही सेंटर, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं जाके तब कहा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में आश्रम होना चाहिए, है ना, सन्यासी नहीं, गृहस्थ में रहते हुए। गृहस्थ आश्रम भारत के सनातन धर्म है, गृहस्थ है, सन्यास धर्म बाद में शुरू हो गया। तो गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो बाबा ने बॉम्बे में जाके स्वयं ओपनिंग किया। तो उसके लिए बाबा ने कहा धन माँ बाप ने भी बच्चों को किसके लिए दिया? और किसी को नहीं दिया। और किसी को देते हो तो दान करना चाहिए, हमको पता है। तो दान करने से पहले एक व्यवस्था है, क्या है वो? हाँ, ये शब्द भूल जाता है, दान करना चाहिए इतना पता है। दान करने से पहले एक शब्द है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, श्री राम की धर्मपत्नी थी, राजा जनक की बेटी थी। उनको पता नहीं है कि ये रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? हमारे सामने अगर कोई आया तो हमको कैसे पता चले ये अच्छा है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये दिल का साफ नहीं है, ये दिल का साफ है, ये हमको कैसे पता चलेगा? उसका वाइब्रेशन आएगा, टच होता है। अगर बुद्धि टच करने की, बुद्धि स्वच्छ है तो पता, नहीं तो कोई सब्जी बेचने आता है, कोई भिक्षा मांगने आता है, साधु भी किस वेश लेके आएंगे ना, तो कैसे परखेंगे आप ये अच्छा है ये खराब है ये ठीक नहीं? तो तो कैसे कहें? कुछ तरीका होना चाहिए ना, कोई मापदंड होना चाहिए ना। अगर इस दूध में पानी है, कैसे कहा आपने? कोई मापदंड है। तो यहां भी ये अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक नहीं, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं, कैसे कहा आपने? ऐसे कह दिया, किसी ने बोला और आपने भी बोल दिया। नहीं, कोई तो मापदंड चाहिए ना, कुछ किसी प्रकार से पता होना चाहिए, कैसे कहेंगे ये ठीक है ये ठीक नहीं। हाँ, दृष्टि तो दृष्टि से भी, माता जी देखो नजदीक आए, दृष्टि से कैसे पता चलेगा? दृष्टि तो दिखा देते, आप बोल देख रहे हो। और बताओ, और कोई तरीका बताओ। दृष्टि से माता जी ने आधा बता दिया, आधा और भूल गया, पहले क्लास में कभी सुना होगा नहीं। कैसे बताएंगे कि ये भाई ये माता जी ठीक है नहीं ठीक है? इनकी दृष्टि ठीक नहीं, इनकी वृत्ति ठीक नहीं, इनके आचरण ठीक नहीं, ये ठगने वाला, ये गुस्से वाला है, ये अच्छा है, सज्जन है, ये कैसे समझे? आज कलयुगी दुनिया में अभी ज्ञान तो मिला, बाबा ने दिव्य दृष्टि दिया है ना, सबको दिव्य बुद्धि दिया है, समझ दिया है, तो देखने के बाद उसको यूज करना चाहिए ना। तो किसी को देखते ही दान करने से पहले, कर्म करने से पहले, नहीं तो कर्म बंधन हो जाता है, कोई लूट के चला जाता है, फिर पश्चाताप, अरे हमको पता ही नहीं था ये बहुत अच्छा था। कभी कभी मदद करना चाहिए, बाबा की भी मदद करो, लेकिन पात्र को देख के मदद करना चाहिए। तो पात्र को कैसे देखें वो बताओ। हाँ, परखने की शक्ति तो चाहिए, परखने की शक्ति कहां से लाए? अभी तो नहीं है, परखने की शक्ति कहां, कैसे लाएंगे? वो सोनार परखता है, तो आप व्यक्ति को कैसे परखेंगे? कोई बताओ। हाँ, पैसे दिए आपने, कहा गरीब है, पैसे दिए आपने किसी को, उसने जाकर के दारू पिया, शराब पिया, कुछ किया, कर्मों का फल, दान तो करना चाहिए, दिखाई तो दे रहा है गरीब। देखो महाभारत में कहानी आती है, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया है ना, तो उन्होंने कहा अंत में कि श्री कृष्ण खड़े थे तो कहा, बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मुझे ये दुख क्यों? अब मेरे लिए कोई शैया नहीं मिले। और तब क्या कहा श्री कृष्ण ने? कहा, आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं। तो उन्होंने कहा, आप बचपन में रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मनसा इच्छा अच्छी थी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, इतना लक्ष्य था, आपने हिंसा नहीं किया, रथ को रोका, सांप को उठा के बाजू में किया, बचाया, लेकिन जो बाजू में किया आपने, रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते, तो कहां गिरा? आपका लक्ष्य तो नहीं था ना, आपकी आपका लक्ष्य तो अच्छा था कि दुख नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए, बचा दिया आपने। फिर भी कहा, जितने कांटे उसको लगे थे उतने कांटे आज आपको शरीर को लग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उसने गलत क्या किया बताओ, अभी इससे बताओ। दान करते समय, कर्म करते समय क्या करना चाहिए? तो कहते पात्र को देखो। अब उसने सांप को देखा, हिंसा नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए, तो बचाया उसने, तो भी कहा गलत है। क्या गलत हुआ? हाँ, तो कांटों में जानबूझ के फेंका नहीं, उठा के बाजू में किया, तो वहां कांटे थे उसको लगेंगे ये तब सोचा नहीं। तब कहा त्रिका बाबा, कहता है मुरली में कि किसको? ब्राह्मणों को बताया, जिसने कहा ना अभी कि हम ब्राह्मण अभी है, शूद्रों को पता नहीं, ये कलयुगी लोगों को पता नहीं, सत्युग में जाएंगे तो ऐसे कर्म नहीं होगा, अब हम बीच में है, अब हमारे से कोई कर्म नहीं होना चाहिए। तब बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को दिव्य दृष्टि दिया है, तीसरा नेत्र दिया है ना, आपको हमको कहा बच्चों को, त्रिकालदर्शी हो, कोई भी कर्म करते हो आप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को सोच समझ के कर्म करो, नहीं तो कर्मों से पाप होगा। अब उसने सोचा सिर्फ वर्तमान, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसका कहां क्या करना चाहिए ये नहीं सोचा। हम भी रस्ते पर जाते हैं, कोई गरीब दिखाई दिया, गरीब भिखारी मांगता, आपको भी दया आती है, दान करना चाहिए, लेकिन आप दान करते हो, पांच रुपए दिया, उसने जाके तंबाकू खाया, शराब किया, आप कहेंगे मैं क्या करूं, वो उसकी कर्म है, नहीं, यहां व्यवस्था है, देते समय आपको ज्ञान होना चाहिए वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी गति हमारे ऊपर आती, गतिमती है, कर्मों की गुह्य गति है। तो ये कैसे परखे, अब उसके कोई सॉल्यूशन बताओ। आज कलयुग में आप संसार में रहते हो, अभी हमारी बात आई, कलयुग की दुनिया तो नहीं, हम अब हम संगम पर है भाई। हाँ भाई जी कहता है कोई आज जो आने वाला आगे बैठेंगे, नहीं तो हाँ आगे बैठो। हाँ कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। अगर आपने कहा कोई गरीब आया भीख मांगने के लिए भी, साधु सन्यासी कोई आया, आपने कहा भाई जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, पति ने हमको पैसा नहीं दिया, घर में अनाज है, पानी है, चाय है, खाना है, फल है, अब जो चाहो फल देती हूँ, फल खा लो। हाँ नहीं तो कपड़े फटे हैं तो कपड़े देती हूँ, पैसे मेरे पास नहीं। अगर वो कुछ भी कहता है तो आपका कोई दोष नहीं है ना, वो तो उसका है, तो क्या को अर्ज नहीं। हाँ नहीं आपके पास तो क्या उसका, आपका कोई दोष नहीं। लेकिन यहाँ आपको परखना चाहिए, वो कैसे परखे, वो तेरे को तरीका बताओ। अभी सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, उनको उसको नहीं पता चाहिए रावण है कि साधु है, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब हम तो कौन है, देवता भी नहीं बने और कलयुग में भी नहीं है। भाई जी कहते हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को एक दृष्टि दिया है, ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि दिया है, वो दिव्य दृष्टि का उपयोग कैसे करना है वो बताओ, किसी ने सुना। हाँ वही माता जी ने कहा परखने की शक्ति चाहिए, कहाँ मिलती है, मार्केट में मिलती है तो कहाँ से लेके आएंगे, योग भी कर रहे हो तो परख कैसे परखो। तो उसकी एक सहज तरीका है, करके देखना। माता जी ने थोड़ा सुनाया, इसने सुनाया दृष्टि, माता जी ने सुनाया तो वो कैसे, उसकी विधि चाहिए। अगर कोई माता जी भाई कोई सब्जी बेचने वाला कोई भी आने दो, आपको पता है ये किसने, बहुत लोगों ने कहा ये माता जी ठीक नहीं है, उन्होंने कहने से सुनी सुनी बातों पर नहीं चलो, आप परख के देख लो तो आपके पास समझ है, नहीं तो सुनी सुनी बातों पर हम चलते हैं तो रामायण बन गया। पता है रामायण कैसे बना, रामायण जो बना उसके पहले किताब आता है, पहले तो रामायण कैसे लिखा, तो एक साधु के दो तीन चेले थे, तो एक ने उल्टी किया तो दूसरे ने उसको बोला, दूसरे साधु को, अरे उसके पेट से तो काला काला निकला, तीसरे को उसने बताया अरे उसके पेट से काले जा करके 10 लोगों के बाद कौवे निकले, तो एक ने पूछा पेट से कौवे कैसे निकले, नहीं मुझे उसने कहा, मुझे उसने कहा, वो एक चतुर था हुशार, उसने कहा पेट में कौवे कैसे आएंगे, मैं पूछता हूं खोज करता हूं। तो उसने उसको पूछा आपको किसने कहा, हाँ मुझे इसने कहा, अच्छा उसको पूछा आपको किसने कहा, उसने कहा, आखिर लास्ट तक पहुंचा, भाई जी मैंने कौवे नहीं कहा था, मैंने काला काला कहा था, तो उसने काला कौवा होता है। तो सुनी सुनी बातों से रामायण पहली कहानी आती है, रामायण अगर आप पढ़ो 7 वॉल्यूम्स है तो सबसे पहले एक कहानी आती है, ये रामायण कैसे बना, सुनी सुनी बातों से बना। तो धोबी ने कहा, तो धोबी ने कैसे राम ने सीता को वनवास में भेज दिया, देखा नहीं सुनी सुनी बातों से। तो यहां भी कोई कहेंगे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कोई किसी की महिमा नहीं करता है ना, ग्लानी करना सबसे कलयुग में नंबर 1 चीज है ना, उसको कहते हैं लेग पुलिंग, एक दूसरे को आगे कोई जाता है 10 लोग उसको नीचे खींचते हैं। तो ये दुनिया की कलयुग की दुनिया की भारत की नीति है, लेकिन अभी हम संगम पर है, हम कैसे परखे वो बताओ, उसके एक सहज तरीके से करके देखना। कभी भी कोई भी सामने आया जो माता जी ने कहा दृष्टि दे दो, सिर्फ दृष्टि नहीं ये स्मृति चाहिए, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझ के एक सेकंड इनको देखना, अगर ये माता जी आंखें हिलाती नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करती है, सबना दिल साफ है, जो चाहे बात करो आराम से मिलो, अगर दृष्टि देते हो लेकिन स्मृति चाहिए कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये स्मृति में रखते हुए अगर दृष्टि देते हो, एक ही सेकंड एक मिनट देखते नहीं रहना, दृष्टि देती अगर वो इधर उधर हिलाती नहीं है, हिलाती है दाल में कुछ काला है, सोच समझ के संबंध संपर्क में आना। अभी कलयुग दुनिया में भी हरेक का लक्ष्य अलग अलग है, सभी एक जैसे ना, जैसे कोर्स करने पे सेंटर में आते कोई किस लक्ष्य से आया, ज्ञान सुनने के लिए आने वाले बहुत कम होते हैं। तो अभी हमको सेंटर में अकेली बहन रहती है, किस किस प्रकार के लोग है, यहां भी बहुत लोग मिलते हैं, बात करते हैं, लक्ष्य हरेक का अलग अलग है, होगा फिर भी बाबा ने संगम पर हो अब हमसे कोई पाप नहीं होना चाहिए। हाँ, आप नहीं चाहते हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति के वाइब, जैसे माता जी ने कहा वाइब्रेशन, वो कब कैच कर सकता है? आपकी बुद्धि स्वच्छ है, कैच करता है, उसको दिव्य बुद्धि कहा। अभी हमारी बुद्धि दिव्य नहीं, गुस्सा आता है, व्यर्थ विचार चलते हैं, है ना, इतनी दिव्य नहीं। बाबा ने तो दिया कि आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है नहीं, समझ है, फिर भी एक प्रयोग। तो वहां परखने की शक्ति का, तो परखने की शक्ति की विधि साधारण आज संसार में रहते हुए कोई भी हो, तब बाबा ने व्यवस्था किया, खाना किसी को मिलते हो दृष्टि दे दो, योग में बैठते दृष्टि दे दो, उसके अंदर क्या चल रहा है। देखो बाबा के पास भी तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, एक राजा, एक रॉयल फैमिली और एक प्रजा। तो बाबा ने भी तीन व्यवस्था रखी है। आप पूछेंगे योग में गीत क्यों बजता है, योग में कोई बैठ के दृष्टि दे रहा है, उनको देखना चाहिए कि योग करना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, ये क्यों? बाबा के तीन बच्चे हैं, एक बच्चे को विधि पता है, आत्मा समझ, बाबा को याद करना चाहिए। तो योग में आके बैठता है, अपना आत्मचिंतन करता है, बाबा को याद करता है, आंखें खुली है, देख ऐसे रहेगा। और एक बच्चा है तो वो बैठता आकर के आंखें खोल करके, लेकिन उसके मन में कुछ चिंतन चलता है, कल क्या करना चाहिए, कल उसने ऐसे व्यर्थ चलता है, तो उसके लिए वो गीत बजाए, कम से कम यहां बैठ के व्यर्थ चिंतन नहीं करे, वाइब्रेशन खराब नहीं करे, तो क्या करे? तो बाबा ने व्यवस्था, गीत उसके लिए है, तो कम से कम गीत का चिंतन करे। तीसरा और एक है, आराम अच्छी तरह से बैठता है योग में, कोई गया इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, ऐसा देखता रहता है, तो उसके लिए सामने कोई बिठाया है, मुझे कोई देख रहा है, तो जागृत होता है ना। तो ये बाबा के तीन प्रकार के बच्चे, तीन व्यवस्थाएं रखी है। आप पूछेंगे कोई बैठ के दृष्टि क्यों दे रहा है, योग तो बाबा से करना है, गीत क्यों बज रहा है ना। तो ये तीन प्रकार के, जो नंबर वन है, जिसको विधि पता है, बैठते ही आत्मा समझ, बैठते ही आत्म चिंतन करता है और परमात्मा शिव बाबा को याद करता, वो नंबर वन जिसको विधि पता है। दूसरा, विधि पता भी है लेकिन उसके मन में कोई चिंता है, कुछ ने कुछ बोला हुआ, कोई समस्या है, कोई दुख है, कुछ तो है, तो वो चिंतन चलता है व्यर्थ, तो क्या करे? तो बाबा ने उस बच्चे को भी संभालता है, बाबा ने कहा हर बच्चे पर बाबा संभालता है, तो उसके लिए गीत बजाए, कम से कम गीत का चिंतन तो करे, गीत सुनाई देगा है ना। तीसरा और एक है, गीत भी नहीं सुनता है, योग भी नहीं, इधर उधर देखता रहेगा है ना, तो उसकी आदत है, तो उसके लिए सामने रखा, कोई मुझे देख रहा है, तो अलर्ट हो जाता है ना। तो इसके लिए ये व्यवस्था है। तो यहां भी एक व्यवस्था दिया है संसार में, अब हमसे कोई पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर नहीं है, सामने वाला व्यक्ति परिस्थिति ऐसी आती है, व्यक्ति ऐसे है, परिस्थिति ऐसी है, सब एक जैसे नहीं। तो बाबा ने ये अस्त्र दिया है, ज्ञान दिया है, दिव्य नेत्र दिया है, तो वो दिव्य नेत्र को भी यूज कैसे करे, ज्ञान को भी, तो वो विधि चाहिए। अब हम देवता भी नहीं बने, कलयुग में भी नहीं है, है ना, अब हमसे पाप नहीं होना चाहिए, तो व्यवस्था दिया, किसी से मिलो, कोई कैसा भी हो, देखते हुए भी कितना काला है, बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं सूट बूट पहन के आया, इसलिए नहीं, कोई गरीब है, काला है, कवड़े कपट के हो, तो भी उसके शरीर को, उसके कर्मों को नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे, फिर भी किसी के संस्कार ऐसे होते हैं। तब आप अपने को बचाने के लिए बाबा ने व्यवस्था दिया है, बच्चे एक सेकंड देख लो, अगर देखती उनके आंखें हिलती नहीं है, दृष्टि से दृष्टि मिलाती है, मिलाता है, तब समझना दिल साफ है, आराम से बात करो, सज्जन है। अगर आंखें इधर उधर थोड़ा हिलाता, इधर देखते ही, इधर देखता, इधर देखता हिलाता है, क्यों हिला रहा है? अंदर चंचलता है, दिल साफ नहीं, ये परखने की शक्ति। आज साधारण रूप से जब आपके, जैसे माता जी ने कहा, अगर आप पक्का योगी हो, बुद्धि स्थिर है, स्वच्छ है, कोई अंदर नहीं है, तो दूसरों के वाइब्रेशन कैच करता है। ऐसे उदाहरण बताते हैं, देखो बुद्ध था, बुद्ध को अंगुली माला जैसे राक्षस सब गांव वालों को मारता था, बुद्ध ने कहा मैं इसको ठीक करता हूं, तो सबने कहा नहीं वो तो मार देगा आपको, आप नहीं जाना, माता जी उधर, अच्छा उधर से, तो आप जाना नहीं, नहीं मैं जाऊंगा। गया उसके सामने और वो मारने के लिए आया, लेकिन उसके पास शांति की शक्ति, सिर्फ देखता रह गया संकल्प शक्ति से। देखता रहते वो मारने के लिए उठा भी तो भी हिला नहीं, देखता देखते देखते झुक गया, पांव पर पड़ गया, जो माताजी कह रही थी। क्यों कितना भी कठोर व्यक्ति हो, अधम से अधम महापापी भी हो, अगर आपके पास वो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, यही बाबा चाहता है, अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी, ऐसे व्यक्ति आएंगे जो तड़पते हुए, जिनको कुछ चाहिए, कहां से मिलेगा? तो हम बाबा के बच्चों से मिलेगा ना, और कोई नहीं। तब बाबा ने कहा मुक्तिदाता हो, है ना, सबको सुख शांति देने वाले हो, ज्ञान के चिटे डालने वाले हो, तड़पते हुए आत्माएं आएंगी। किसी के आत्माएं भूत आत्माएं प्रवेश करती है, ये कितने लोग मर जाते हैं, ऐसे भी आएंगे, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाएगा। जो माताजी कह रही थी कि बुद्धि स्वच्छ है, किस भी अंदर किचड़ा नहीं है, आत्मिक स्मृति है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, यह स्मृति है मैं कौन हूं। यह स्मृति ही औरों की वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन करती है। जैसे हमारी स्मृति चाहे, अगर आपकी स्मृति है व्यवस्था है, जैसे आपकी स्थिति, स्थिति कैसी बनती है, कैसे बनेंगी, अपने आप स्थिति बनेंगी, इनकी स्थिति अच्छी है, कैसे बनी हो, स्मृति से। स्मृति माना जो ज्ञान सुनते हो उसका अंदर चिंतन चाहिए। ये सुनने वाला ज्ञान नहीं, भक्ति में सुना वहां छोड़ के आए नहीं, जो ज्ञान सुनते हो उसका सारा दिन चिंतन चाहिए। अगर ये नहीं है, संसार में रहते हुए दुख अशांति पर चिंतन, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, वही चिंतन चलता है, तो वो कहां है? भाई जी कह रहा था वो अभी भी कलयुग में भी है, ज्ञान सुनते हुए भी अगर संसार की चिंता है, दुख है, बहुत बहुत समस्या है, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि पूरा कलयुग से हम उठे नहीं अभी। तो भाई बाबा कहता है कि बच्चे अभी भी ज्ञान सुनने के बाद भी कलयुग है, उसी का चिंतन। तब बाबा सवेरे सवेरे ज्ञान देता है, एक ही शब्द, एक या दो जो अच्छी चीज लगी बाबा के महावाक्य, कर्म करते रहो, संसार में रहो, सब कुछ करते हुए अंदर वो चिंतन चलना चाहिए। तो वो चिंतन है तो आप संगम पर हो, स्वरूप बने नहीं अभी तक, प्राप्ति नहीं हुई, तो जो संसार का प्रभाव है वो प्रभाव आपको अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा। उसको कहते गृहस्थ में कमल फूल समान रहो। गृहस्थ है, किचड़ा है, लेकिन पानी, पानी कौन सा, ये ज्ञान, ज्ञान के कारण संसार के चिंतन नहीं चलता, दुख का चिंतन नहीं चलता है। दुख समस्या नहीं, ऐसे नहीं अभी एकदम परिवर्तन हो गया, नहीं है। आप सोच के क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? हाँ, समस्या है, बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये करना चाहिए, निर्णय लिया, लेकिन उसी का सोचते रहो तो बढ़ेगा कि कम होगा? आप कहेंगे क्या करें, विचार तो आएगा ना। आज बाबा ने कहा इसके लिए, क्या कहा आज बाबा ने, इसी के लिए एक शब्द कहा, और उसके पहले और एक, उसके पहले और एक बताओ, असोच है, उसके सोच तो आएगा, उसके पहले और एक सुनाओ, मन में व्यर्थ विचार चलेगा लेकिन कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करो। मन में विचार आएगा, नहीं आना चाहिए नहीं, एकदम असोच नहीं बन सकता है, बनो कह नहीं, आएगा, दर्द है, दुख है, समस्या है, नहीं ऐसे नहीं, तो वो है अंदर, तो उसका चिंतन करने के लिए ज्ञान सुन के आए। जो मुरली क्लास में नहीं गए, ज्ञान सुना नहीं, तो उसके अंदर ये चलेगा ना। आप कितना भी कहो नहीं चलना चाहिए, संभव है, चलेगा, जो है परिस्थितियां है। अगर जिसने ज्ञान सुना तो उसके ऊपर है वो, ये समस्या तो वहीं है, तो जो सुना बार बार उसका चिंतन करते हो, ये भी बार बार खींचेगा, अरे ये वहां है, बाबा बैठा है। बाबा ने कहा आप सोचो नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो बाबा से बात करते हो, जो ज्ञान सुना उसका चिंतन करते हो, तो वो जागृत नहीं होता, उसको दबा के रखते वहां, आका वहां है। तो ये अच्छे विचार ज्ञान जो उसका चिंतन करते हो, उसको कहा विकर्म विघ्नों पर विजय, परिस्थिति पर विजय, परिस्थिति आएंगी नहीं ऐसा नहीं, उसके पर विजय प्राप्त करना है। जो ज्ञान सुना उसका चिंतन करो, उसका वर्णन करो, औरों को सुनाओ, देखो ये कहा बाबा ने, ये कहा, है ना, तो बिजी हो जाते हैं। नहीं तो खाली है, जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं तो क्या सुनाएंगे, वही बात चलेंगी, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये हुआ, इसने ये कहा, वही चलेगा, तो वो बढ़ेगा। ऐसे नहीं संसार में आज किसी के पास समस्या नहीं, ऐसे कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, तब इसका नाम है संगम का, सारे कल्प का अंत है, भरा हुआ है। लेकिन ज्ञान के कारण, संसार कीचड़ है ये, लेकिन पानी के कारण आप उससे अलग हो, मुक्त हो। अगर जिसके अंदर जो कमल पानी के अंदर है, जो ज्ञान अंदर है, ये गंगा जल है, पवित्र है, तो ये ज्ञान का चिंतन जिसके अंदर चलता है, वर्णन जो चलता है, तो उसका वो चिंतन नहीं चलेगा। समझ में आया? तब बाबा ने कहा, मन में कभी विचार भी आया, कर्मों तक नहीं लाओ, वर्णन नहीं करो, सुना, कर्मों में नहीं लाओ। फिर कहा, असोचता बनो, नहीं सोचो, नहीं तो वो नहीं सोचो तो क्या सोचो? अच्छा, हाँ, जो ज्ञान सुना, हाँ देखो माता जी को अच्छी याद है, हाँ देखो, अच्छा तरह से जो ज्ञान सुना सवेरे उसका चिंतन करो, सिर्फ चिंतन इतना भी, वर्णन भी करो, बिजी रहेंगे उसके अंदर, है ना, नहीं तो खाली मन है, एक मिनट दो मिनट सोचेंगे, वर्णन करो, औरों को एक सुनाएंगे वो और एक सुनाएगा, एक में एक मिला क्या हो गया, 11 बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे दान भी करना सीखना चाहिए, नहीं तो अपने तक रखो तो वृद्धि नहीं होगी। तब का ज्ञान का दान करो तो क्या होगा, वृद्धि होगी। ये एक और क्या सुनाया, परखने की शक्ति समझ में आया। दूसरे बाबा ने कहा कि क्या करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, दुआएं प्राप्त करो। तब बाबा ने कहा, अगर आपके पास धन है तो ईश्वरीय सेवा में लगाओ, सेंटर खोलो, औरों को सुख मिलेगा, बहुत आत्माओं को। देखो अगर आप कहेंगे किसी, कोई गरीब है उसको दे दो, कोई बीमार है उसको दे दो, चलेगा ना? नहीं, किसी को अगर बीमार है, आपने उसको बीमारी ठीक कर दिया, आपने किसको हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला, धर्मशाला खोली, किसी को लंगड़ा था उसको आपने पाव बना के दिया, कपड़े दिया, तो ये भी चलेगा ना? सेंटर ही खोलना चाहिए क्यों? और ये कैसे कैसे हो गया, के जलन के लिए? वो भी आपने तो उस मनुष्य को ही दिया ना। अगर बीमार था बेचारा, आपने दवाई दिया, कपड़े नहीं थे, कपड़े दिया, खाना दिया, हाँ कोई गरीब था उसको पैसे दिया, तो ये आपने दान किया। तो आप, बाबा ने कहा सेंटर खोलो, क्यों? अच्छा हाँ, ये ठीक है, फिर भी आपने कहा थोड़ा और भी जानना चाहिए। जो आप कुछ दे रहे हो वो शरीर को दे रहे हो, खाना शरीर को दिया, दवाई शरीर के लिए दिया, है ना, और कपड़े दिया, वो सब शरीर, शरीर खत्म हो गया, सब खत्म, एक का एक गुना मिलेगा। अगर ये जो ज्ञान सेंटर खोले शरीर के लिए नहीं, आत्मा के कल, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा को, मुरली के पॉइंट सुनाए आपने, किसको शरीर को नहीं दिया, ये आत्मा को दिया, आत्मा अविनाशी है, आत्मा के साथ ज्ञान जाएगा, है ना। तब कहा एक का पदम गुना, जो हॉस्पिटल, बाबा ने कहा हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, हाँ शरीर के, जैसे अमेरिका में एक भाई, भाई बहन दोनों है, उन्होंने ऐसे किया, कोई भी सेंटर में आएगा पहले उसका ट्रीटमेंट, फिर उसको कोर्स, दोनों, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, आत्मा भी चाहिए, तो ना यहां भी। तो बाबा ने कहा जो सेंटर खोलते हो आत्मा के लिए, शरीर की व्यवस्था करने के लिए, हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, डॉक्टर है, खाना देने वाले बहुत है, बहुत लोग है, लेकिन आत्मा का कल्याण करने वाले कोई नहीं है, है ना। तब बाबा ने सेंटर खोलते हो तो वह पतित आत्मा पावन बन जाती है, और एक नहीं, मिनिमम बाबा ने कहा कि जन्मों तक कम से कम वर्षा मिलेगा उसको, तो वो काम करो। तो सेंटर कितने लोग खोलेंगे? अच्छा देखो कितने सेंटर खोलेंगे, दिल्ली वाले, पांडव भवन वाले, एक दो, पक्का याद रखना सेंटर खोलेगा। हाँ मुझे याद है, एक बार एक बहन जी के सामने एक छोटी सी कन्या खड़ी थी, तो वो बहन जी कह रही थी, भाई जी आपको इतने समय बुलाया, आप आते नहीं हो कभी सेंटर में। तो वो छोटी बहन की तरफ, आप हमारे सेंटर में क्यों नहीं आते हो? हमने कहा आपका सेंटर थोड़ी है, वो तो दीदी का सेंटर है, तो आप पढ़ो और आप सेंटर बनाओ तो मैं आऊंगा। और उसने पढ़ करके, गुजरात में पढ़ करके सेंटर खोला 10-15 साल के बाद। और मैंने कहा था ऐसे नहीं 2-3 स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट होना चाहिए। फोन किया शिवरात्रि के दिन, भाई जी आपने मुझे 10-15 साल पहले कहा था, अभी देखो मैंने सेंटर भी बनाया और 100 स्टूडेंट भी बन गए, आपको आज आना चाहिए। शिवरात्रि के दिन मैं यहां से गया, है ना। तो ऐसे माता जी को भी याद दिलाना पड़ेगा ना, माता जी ने हाथ उठा के मैं सेंटर बनाऊंगी, हाँ तो सेंटर बनाना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा, फिर इतने स्टूडेंट होंगे, हाँ तो ये अनेक जन्मों का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तब कहना हम इस सेंटर में गए थे, इन्होंने हमको ज्ञान सुनाया था, ये अविनाशी है, अविनाशी कमाई जमा करो, ये आशीर्वाद आत्मा को मिलते, शरीर को नहीं, खाना दिया शाम को फिर भूख लगेंगी, पैसे दिया, दवाई दिया और कुछ दिया, थोड़े दिन अल्प काल के लिए है, सदा काल के लिए सुख चाहते हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ दो काम, एक आप ज्ञान सुनाना चाहिए, सबसे पहले कोई मिला तो ज्ञान क्या सुनाएंगे, सिंपल आज की मुरली के पॉइंट, ब्राह्मणों के मुख पर ज्ञान रतन होते हैं, तुरंत दान, कोई मिला ओम शांति करके छोड़ना नहीं, हो गया ओम शांति क्या छोड़ दिया, कुछ दिया नहीं है ना, क्यों, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, एक लास्ट में सुनाता हूं, देखो तिरुपति जैसे मंदिर में ये दोनों माताएं जाती है, लेकिन एक माता की मान्यता प्राप्त होती है और एक माता जी को कुछ मिलता ही नहीं है, क्यों, मंदिर में दोनों गए, दोनों की मान्यता पूरी होनी चाहिए ना, इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, भगवान देता है, एक को मिलता है एक को नहीं मिलता है, क्यों, तो कर्म क्या, दोनों ने अच्छे कर्म, अच्छी भावना है, दोनों श्रद्धा है, भावना है, मंदिर में गए, तो क्या कर्म था गलत, तो कैसे प्राप्त, भगवान देगा ना, हाँ मंदिर में मिलेगा ना, ये बाबा ने देखो अब भी 29 अप्रैल के मुरली में, अव्यक्त मुरली में सुनाया कि कभी कभी हम कहते हैं माता जी को देखते शुभ भावना देते हैं, बाबा इसका कल्याण करो, तो बच्चे इसको कुछ नहीं मिला, आपका कुछ भाग्य नहीं बना, लेकिन आपके मन में उनके प्रति अच्छे विचार चले, आपका मन स्वच्छ रहा इतना ही, लेकिन आपने इनको कुछ दिया ही नहीं, आपका भाग्य नहीं बना, अगर कोई आपके सामने प्यासी, बहुत प्यास से तड़प रहा है, लेकिन आपके अंदर संकल्प आया कि मैं इसको पानी पिलाओ, खुश कर दो, लेकिन आपके पास पानी तो नहीं है, आपने पानी दिया ही नहीं उसको, लेकिन संकल्प आया, आपने अपने मन को स्वच्छ किया, मन को बचाया, मन में व्यर्थ नहीं आया, अपने बचाव किया, लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई, अगर इसको देते थे तो उसकी दुआएं मिलती थी, वो आपकी दुआएं, वो आपकी प्राप्ति, वो पूंजी, वो भाग्य, अगर ये दोनों मंदिर में गए, मंदिर से कुछ नहीं मिलता है, इन्होंने जो भाग्य कमाया वहां फलीभूत होता है, जैसे धरती, बीज अच्छा है, धरती ठीक नहीं है, बीज बोलो तो वहां कुछ उगता ही नहीं है, बीज भी अच्छा है, धरती भी अच्छा है, वहां बीज बोलो फलीभूत होता है, तो पुण्य जमा करना चाहिए, सिर्फ दुआएं दिया, शुभ संकल्प करने से आपने किसी को कुछ प्राप्ति नहीं हुई, आपने अपने बचाव किया, आपके मन को स्वच्छ रखा, आपके मन में देखकर, किसी को देखकर गलत विचार नहीं आया, लेकिन भाग्य बनाना है तो कुछ दान, तब वो आशीर्वाद देगा ना, खुश होगा ना, तब देखो हाँ इन्होंने मुझे संतुष्ट किया, दिल से निकलता, अंदर ही अंदर बोलता नहीं कुछ, हाँ इन्होंने मुझे बहुत सुख दिया, तो ये दुआएं, किसी सेंटर बना दिया, देखो आज सेंटर में बहुत अच्छा अच्छा सेंटर बना है, तो ये दुआएं निकलती है, ये जमा होती है, ठीक है, तो जमा करना चाहिए, सिर्फ संकल्प तक ही नहीं, कुछ करना चाहिए, मंदिर से मूर्ति देती है तो सबको देंगे ना, एक को मिलता एक को नहीं मिलता, क्यों, तो भाग्य फलीभूत होता है उस स्थान पर जाने के बाद, कि धरती स्वच्छ है, आपने भाग्य कमाना चाहिए, औरों को सुख देने के, तो बाबा ने कहा सुख देने का कर्म करो, ठीक है, समझ में आया, भाग्य सिर्फ मनसा सेवा तक नहीं, हाँ करना चाहिए वो भी, उसकी भी और तरीका है, सेवा क्या है, यहां भाग्य बनाना है, नहीं तो संकल्प करके छोड़ना नहीं, एक मुरली के पॉइंट सुनाओ, ठीक है, ओम शांति।
जी।